तो आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर से प्रेम कैसे हो। हमारे जीवन में ईश्वर का क्या रोल है, यदि इसका ठीक ठीक पता लग जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर से प्रेम आपके अंदर पैदा ना हो। हम ये तो जानते हैं कि संसार के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, परिवार के बिना, समाज के बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता। जो कुछ भी हम जीवन जीते हैं, हम सब जानते हैं वो दुख की निवृत्ति के लिए जीते हैं। हमको दुख नहीं चाहिए, हमको सुखी जीवन चाहिए। लेकिन ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे कितना भी हम पुरुषार्थ कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसा हमको संसार में कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आता जिसके जीवन में सुख के साथ दुख ना आते। एक भी एग्जाम्पल जहां तक हमारा इतिहास पहुंच सकता है, हमको ऐसा प्रकृति में नजर नहीं आएगा कि ऐसा भी कोई मनुष्य धरती पर पैदा हुआ हो जिसके जीवन में सुख ही सुख आते हों, दुख ना आता। हाँ, इतना जरूर है किसी के जीवन में कम सुख नजर आते हैं, किसी के जीवन में ज्यादा सुख नजर आते हैं, बस अंतर इतना ही। सुख के मुकाबले में एक और वस्तु भी है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज है, उससे ज्यादा कीमती चीज कोई भी नहीं है। कोई भी संसार का व्यक्ति मरना नहीं चाहता, जीवन चाहता है। सुख से भी ज्यादा कीमती चीज हमारे लिए जीवन है, पहले जीवन बाद में सुख। हमको यह नहीं पता कि इस जीवन का मालिक कौन है, जीवन भी चाहिए और साथ में चैन भी चाहिए। हम चैन से जीना चाहते हैं, तो सत्पुरुष और उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र, उनके वचन वो यही निर्णय दे रहे हैं, वो जीवन और वो चैन, जिसको हम शांति भी कहते हैं, जिसको हम आनंद भी कहते हैं, वो चैन और वो जीवन केवल ईश्वर में है। संसार के जितने भी ऋषि हुए, जितने भी सत्पुरुष हुए, जिनको हम सदगुरु भी कहते हैं, जितने भी अवतार हुए, उन सबका यही निर्णय है कि जीवन और चैन या जीवन और शांति या जीवन और आनंद केवल ईश्वर में है। लेकिन हम इसको नहीं जानते, क्योंकि ईश्वर आंख से दिखाई नहीं पड़ता, अंदर मन के द्वारा उसका बोध नहीं होता। तो कैसे पता लगे ये जीवन और चैन जो है ईश्वर में है? तो इसीलिए यदि ठीक प्रकार से सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार चिंतन ना किया जाए तो हम इस निर्णय पर कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। ये सत्य है कि चैन और जीवन ईश्वर में ही है, क्योंकि हमारे चिंतन में ये बात नहीं आ पाती। तो साधारण रूप में यदि इस चीज को समझा जाए तो हम जानते हैं मेरी जो देह है, मैं इसे काम करता हूं, जो चाहता हूं कर लेता हूं। तो सारी क्रिया वो आपके कर्म इंद्रियों के द्वारा होती है या आपके शरीर के द्वारा होती है, और उस क्रिया का जो परिणाम है जिसको हम कर्म फल कहते हैं, वो मैं अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भोगता हूं या ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता हूं, जिसमें आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियां आंख है, कान है, जिभ्या है, नासिका है और त्वचा है। इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मैं कर्म फल भोगा करता हूं। लेकिन जो कुछ भी क्रिया मेरे शरीर के द्वारा होती है सुख प्राप्ति के लिए या भोग प्राप्ति के लिए, उसकी इच्छा पहले मन के अंदर उठती है, उसके बाद आप क्रिया प्रारंभ करते हैं। और सारी क्रिया का, सारे कर्म का मजा तभी है जब मन के अंदर कुछ विशेष प्रकार के सुख प्राप्ति की इच्छा उठे और उसके लिए मैं कर्म करूं। तो कर्म का महत्व या भोग का महत्व तभी है जब मन के अंदर कोई डिजायर उठती है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए मन के अंदर डिजायर तो उठ रही है लेकिन बुद्धि उसका निर्णय नहीं दे पाती कि जो तेरे मन में डिजायर उठ रही है, ये डिजायर तेरे जीवन को सुखी करेगी या बर्बाद करेगी। जैसे कि कोई चरस पीने वाला आदमी हो तो डिजायर तो उसके अंदर चरस की उठती है और चरस का स्वाद भी वो लेता है, लेकिन बुद्धि निर्णय देती है कि तेरा जो सबसे प्रिय शरीर है, ये शरीर तेरा जो है बिगड़ जाएगा। तो आपने देखा होगा डिजायर उठने के पश्चात भी कुछ लोग इस नुकसान को समझ लेते हैं और फिर चरस पीना छोड़ देते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, हजारों आइटम्स ऐसे हैं जिसके कारण हमको नुकसान नजर आता है लेकिन उनके सेवन में सुख मिलता है हमको, लेकिन उसका जो फाइनल नतीजा है नुकसानदायी है। तो बुद्धि जब निर्णय करती है ठीक ठीक, तो फिर मैं उसको त्यागने की कोशिश करता हूँ। कई बार शिकार बन जाता हूँ, कई बार शिकार बनने से बच भी जाता हूँ। लेकिन एक चीज और है, ये सारा क्रियाकलाप तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन यदि अपने शरीर के बारे में ही मैं विचार करूं, मेरा ध्यान शरीर पर जाए कि मैं इतने कर्म करता हूं, इतनी तरह से सोचता हूं, इतना विचार करता हूं, इसके द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ करता हूं, कर सकता हूं। लेकिन जब मेरी दृष्टि अपने ही शरीर पर जाती है कि ये शरीर कर्म तो मैं कर रहा हूं, लेकिन इस शरीर को जीवित तो मैं नहीं रखा हुआ हूं, मेरी करनी से ये शरीर जीवित तो नहीं, इस शरीर को जीवित कौन रखेगी? तब उसके आगे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस शरीर को आखिरकार जिंदा कौन रखे हुए है, इसकी सारी क्रियाएं कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है? जब ये प्रश्न इसकी बुद्धि में उठता है, तब इसकी वास्तव में अपने बारे में गहरी सोच शुरू होती है। तो ऐसा मनुष्य यदि कभी किसी ऋषि के संपर्क में आ जाए, या कभी इसके हाथ में किसी के कहने से शास्त्र पढ़ने का मौका मिल जाए, तब इसको वहां पता लगता है ऋषियों के द्वारा कि इस जीवन को जो चलाने वाली सत्ता है वो इस देह के अंदर खुद मौजूद है, जिसको ईश्वर कहते हैं। तो ये जो जीवन है वो ईश्वर के द्वारा संचालित हो रहा है, ईश्वर खुद जीवन रूप है। तो सारी सृष्टि का जो जीवन है, एक अणु से लेकर एक कीटाणु से लेकर मनुष्य तक जितना भी जीवन आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा जो जीवन है वो केवल ईश्वर के अंतर्गत है, ईश्वर खुद जीवन रूप है। तो उस ईश्वर के बिना तो एक पत्ता भी सृष्टि में नहीं हिल सकता, मेरे शरीर की कोई भी क्रिया होना संभव नहीं है। और इतना ही नहीं कि केवल वो जीवन रूप है, केवल जीवन रूप नहीं है, वो जानने वाली भी सत्ता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, सारी दुनिया क्या कर रही है, क्या सोच रही है, सब उसको पता है। और वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, ऐसे ऐसे करिश्मे कर सकता है जिसके बारे में सोचकर मनुष्य की बुद्धि दंग रह जाती है, सारे इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फेल हो जाते हैं उसके आगे। सारे वैज्ञानिक यही कहते हैं साहब ये करिश्मा है, बस उसको करिश्मा की संज्ञा दे देते हैं, फिर भी ये नहीं कहते कि ये ईश्वर की करनी। महाराज जी के जीवन की घटना आपको पता ही है, कि ये सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर सर्वसमर्थ है, ईश्वर भक्तों की रक्षा करता है, वो जीवन देने वाला है, उन्होंने अपना पैर जलते हुए तंदूर में डाल दिया था, क्योंकि उनको चैलेंज किया गया था कि भक्त प्रहलाद जलते हुए खंभे से चिपट कर भी जला नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो झूठी घटना है जो किताबों में लिख दी गई है। तो अब सत्पुरुष तो आते ही धरती पे इसलिए हैं, उनके जीवन के द्वारा ये प्रमाणित हो जाता है कि ईश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। तेरे सारे सिद्धांत, तेरा सारा ज्ञान उसके आगे फेल हो जाता है। तो महाराज जी ने जब तंदूर में पैर डाला तो जो प्रेमी उनके पास खड़े थे उन्होंने पैर बाहर निकाला उनका, तो देखते हैं कि पैर तो छोड़ो, एक बाल भी नहीं जला था उसका। अब बताइए, हमारी बुद्धि क्या इस बात को समझ सकती है? जो सांसारिक बुद्धि है इस बात को कभी समझ सकती है क्या? कभी भी किसी निर्णय पर पहुंच सकती है? दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक क्या किसी निर्णय पर पहुंच सकता है? कोई भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक पैर डाल दे तंदूर में, देखो जलेगा नहीं जलेगा? तो बुद्धि के आगे प्रश्न खड़ा होता है सत्पुरुषों का जीवन देखकर। देह तो इनकी भी मेरे जैसी है, और महाराज जी का भी पैर जल जाता था, ऐसी बात नहीं। एक बार जलते हुए अंगारे पे पैर पड़ गया उनका, तुरंत छाला पड़ गया पैर में उनका। लेकिन तंदूर में पैर डालने पर क्यों नहीं जला? तो सारी प्रकृति का जो सिद्धांत है वो तो फेल हो गया यहां पर। पूरी प्रकृति में जो भी साइंटिफिक लॉ काम कर रहा है वो तो फेल हो गया वहां पर, उसके पास तो उसका जवाब ही नहीं। तो इसीलिए सत्पुरुषों के जीवन को देखकर, सत्पुरुषों की करनी देखकर बुद्धि असमंजस में पड़ जाती है, ये क्या बात है। तब ऐसा सत्पुरुष अपने मुंह से जब ये बात कहता है कि ये सब प्रभु कृपा का परिणाम है। महाराज जी ने यही कहा इस घटना के बाद, प्रेमी ये आगे किसी से कहना मत। तुम्हारे अंदर ईश्वर विश्वास प्रभु ने पैदा करना था, इसलिए यह घटना तुम्हारे आगे घट गई। लेकिन सत्पुरुष संसार में चमत्कार दिखाने नहीं आते, क्योंकि मनुष्य के जीवन का उत्थान चमत्कार देखने से नहीं होता, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार करनी करने से होता है। लोग फिर ये चमत्कारों के पीछे लग जाते हैं। तो इसलिए ये घटना आगे किसी से कहना मत। लेकिन घटना हमको विचार करने पर मजबूर करती है, बुद्धि को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार कोई बात तो ऐसी है जिसके कारण हमारे जीवन में और सत्पुरुष के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। गुरु के जीवन को देखिए कि 9 वर्ष की आयु से वो जंगल में रात व्यतीत कर रहा है, और हमारे बच्चों का क्या हाल होता है, 9 वर्ष की आयु में अंधेरे कमरे में जाने से भी डरते हैं। वो भूख प्यास नींद से ऊपर है। तो ये हमारे लिए करिश्मा ही है, ऐसा लगता है ये असंभव चीज है। सत्पुरुष 8वीं क्लास पास है लेकिन 13 वर्ष की आयु में उसके अंदर ये महामंत्र प्रकट हो रहा है। और उसके पश्चात वाणी का प्रकट होना शुरू हो गया, जो आप जानते ही हैं कि आज भी आप उस वाणी को पढ़ो, चाहे आपने एमए पास कर रखा हो, चाहे आपने एमएससी कर रखा हो, उस वाणी को समझना आज भी आपके लिए मुश्किल है। लेकिन वो वाणी बिना सोच के, बिना उस अध्यात्म विद्या के पढ़े लिखे, महाजी ने कोई अध्यात्म की पुस्तक नहीं पढ़ी, वो वाणी अंदर से कैसे प्रकट हो रही है? महाजी खुद कहते थे, प्रेमी जहां बुद्धि का प्रवेश नहीं है, ये उस स्रोत से वाणी प्रकट होती है। जहां बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, तो मैं तो बुद्धि के ऊपर जानता ही कुछ नहीं, मेरी देह में बुद्धि के ऊपर भी कोई चीज है मैं तो नहीं जानता, मेरी बुद्धि का निर्णय ही सब कुछ है। या संसार में जितने भी ये पढ़े लिखे विद्वान नजर आते हैं, इनकी बुद्धि का फाइनल निर्णय है। लेकिन आप दुनिया का कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, कोई भी शास्त्र जो सत्पुरुष के द्वारा प्रकट हुआ, वो शास्त्र स्वयं सिद्ध करता है कि ये बुद्धि का विषय नहीं है, अर्थात बुद्धि की सोच के द्वारा ये ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। तो सत्पुरुषों के जीवन को देखकर, सत्पुरुषों के शास्त्रों को देखकर हमारी बुद्धि दंग रह जाती है और बुद्धि के आगे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। नहीं, बात तो कोई जरूर है, बुद्धि के ऊपर कोई चीज है जरूर। तो ऐसा व्यक्ति जब सत्पुरुष के संपर्क में आता है या उसका किसी सत्पुरुष पर विश्वास आता है, तब वो उस सत्पुरुष के जीवन को बारीकी से पढ़ने की, जानने की, समझने की कोशिश करता है। और उसने जो ज्ञान दिया है उसको समझने की कोशिश करता है। तब वहां से उसके अंदर फिर ये विश्वास पैदा होता है कि इस देह के अंदर ईश्वर सत्ता भी मौजूद है। जैसे इस देह के अंदर मन मौजूद है, जैसे इस देह के अंदर बुद्धि मौजूद है, लेकिन ना मन को ना बुद्धि को दुनिया की कोई अग्नि जला सकती, ना कोई बम का विस्फोट उसको खत्म कर सकता, लेकिन है। जिस प्रकार दुनिया का सुख मुझको तभी सुखी कर सकता है जब उस सुख को भोगने की इच्छा मेरे मन में होती है, तो सुख का महत्व तब है जब मन में इच्छा हो, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं। तो मन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी देह मुझको प्रिय इसलिए है कि मन मौजूद है वहां पर उसके अंदर, क्योंकि मन की सत्ता किसी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं की जा सकती कि मन कोई चीज होती है, सारे वैज्ञानिक फेल है। तो आप खुद जानते हो कि मेरा मन, मेरी इच्छा, इसके बिना तो आपको कोई काम ही नहीं होता, इसके बिना तो आप स्वप्न भी नहीं दे सकते मन के बिना। तो आपका मन होते हुए भी मन का कोई टेस्ट नहीं है, मन को आप निकाल के देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप जानते हो और आप कहते हो कि मन है। क्यों है मन? क्योंकि इच्छा मन के अंदर उठती है, मेरे अंदर इच्छा उठ रही मुझे पता है। इसीलिए जिस प्रकार इस देह के अंदर मन मौजूद है लेकिन फिजिकली इसको टेस्ट नहीं किया जाता, घटनाक्रम से पता लगता है कि मन है, उसी प्रकार इस देह में ईश्वर भी है, ये घटनाक्रम से पता लगता है कि ईश्वर है, लेकिन मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकता। मुझको पता है कि मन मुझको बेचैन कर देता है, मन मुझको बेचैन कर देता है, डिप्रेशन मन के अंदर अंतर्गत ही होता है, और जब वो डिप्रेशन अर्थात मन के अंदर जब निराशा होती है तो उसका असर आपके शरीर पे पड़ने लगता है या नहीं पड़ने लगता है? किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और क्रियाएं ऐसी ऐसी भयंकर आप कर बैठते हो उस मन के चक्र में आकर कि सुसाइड तक कर लेते हो डिप्रेशन में आकर। तो मन कोई साधारण चीज तो नहीं, मन पर ही तो आपका जीवन आधारित है, जीवन क्रिया आधारित है। तो सत्पुरुषों की जो जीवन क्रिया है वो मन पर आधारित नहीं है, उनकी सारी क्रिया ईश्वर पर आधारित है। जैसे मैं कहूं कि मन के हुक्म के अंतर्गत मेरा शरीर काम कर रहा है, सत्पुरुषों का जीवन देखा जाए तो ईश्वर के हुक्म के अंतर्गत उनका जीवन, उनका शरीर काम कर रहा है। ये मेरे जीवन में और सत्पुरुषों के जीवन में भेद है, अंतर है। इसीलिए सारे ऋषि एक ही बात कहते हैं, ये ईश्वर हुक्म में जीते हैं। मैं यदि अपने बारे में कहूं, मैं मन के हुक्म में जीता हूं, जैसा मन हुक्म देता है वैसे जीता हूं। तो इसीलिए इस मनुष्य के आगे यदि ईश्वर का महत्व तो हो सकता है, तो तभी हो सकता है जब इसके जीवन में किसी ऋषि ने प्रवेश किया हो, इसका किसी ऋषि से संबंध बना हो, किसी ऋषि को इसने गुरु बनाया हो। गुरु बनाने का मतलब क्या है? वो विश्वास पात्र जिसके कहने पर मैं जीवन की बाजी भी लगा सकता हूं, गुरु तो वो है। तो गुरु के जीवन से आपको ये पता लगता है कि ईश्वर है, और ईश्वर वो काम करवाता है और वो ज्ञान देता है जिससे मनुष्य की जिंदगी कभी भी बर्बाद नहीं हो सकती, कभी भी। और संसारी ज्ञान के द्वारा कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है आप जानते हैं। एक साइंटिस्ट एटम बम बना देता है, एक व्यक्ति उस एटम बम को फोड़ देता है, लाखों करोड़ों लोगों की जान ले लेता है। तो साइंटिस्टों की खोज से लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इतने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, एक टेलीफोन का ही मिसयूज कर लो तो यही बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। घंटों घंटों इंटरनेट पे व्यतीत कर देते हैं, समय नष्ट कर देते हैं। तो ईश्वर ही हमको होश में लाता है, हर मामले में निर्णय ईश्वर का ही काम करता है। यदि मनुष्य ने जीवन में संभलना है और सही जीवन व्यतीत करना है, ईश्वर के बिना, ईश्वर के ज्ञान के बिना इसका काम ही नहीं चल सकता। तो बताइए ईश्वर का मेरे जीवन में कितना महत्व है? मेरी देह उसके बिना काम नहीं कर सकती, मेरी बुद्धि उसके बिना काम नहीं कर सकती, ये सारा समाज उसके बिना जो है ठीक नहीं चल सकता। तो सारे संसार को गाइड करने वाला, सारे संसार को जीवन देने वाला वो ईश्वर ही है जो मेरी इस देह में खुद मौजूद है। इसलिए सत्पुरुष कहते हैं, प्रेमी तू मन को बाहर दौड़ा रहा है भोगों में, वस्तुओं में, लेकिन सबसे कीमती वस्तु तेरी देह के अंदर मौजूद है। उस अंतर्यामी ईश्वर को गुरु खुद कह रहा है, इन्होंने जाना है और तुम भी उनको जान सकते हो। यदि सब कुछ सामने बैठा हो, जैसे महाराज जी सामने बैठे होते थे तो प्रेमी खुद अपनी आंखों से देखते थे कि प्रेमी सर्कल बना के बैठे हैं उनके चारों तरफ, लेकिन महाराज जी गहरी समाधि में चले जाते, बाहर का उनको कोई होश ही नहीं है कि लोग उनसे बातचीत करने बैठे हैं। जब वापस लौटते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई गहरे नशे से आता है ना वापस। तो कहते थे प्रेमी उस ईश्वर में इतना गहरा आनंद है कि ये देह जो इतनी प्रिय है इसका ही जीव को होश नहीं रहता। जैसी गहरी नींद में मुझे देह का होश नहीं होता ना, मैं तो नहीं जानता उस समय नींद कैसी थी, लेकिन सत्पुरुष जानता है कि समाधि कैसी थी। वर्णन करने में वो भी गहरी नींद जैसे ही कही जाएगी, लेकिन उसमें भेद इतना है, उसमें अंतर इतना है गहरी नींद में और गहरी समाधि में कि नींद का आप वर्णन नहीं कर सकते कि अंदर क्या अवस्था थी, समाधि का आप वर्णन कर सकते हो कि वो कैसी थी। तो उस समाधि में कोई मानसिक क्लेश रहता ही नहीं, और इतना ही नहीं उस समाधि अवस्था वाले पुरुष को ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि ईश्वर को ज्ञान रूप भी कहा जाता है, और जो जीव उस ईश्वर में स्थित हो गया वो ज्ञानी हो गया। क्योंकि सारी सृष्टि का भेद, पूरी सृष्टि का भेद उसके आगे खुल जाता है। आप किताब पढ़ के सीख सकते हो, सारी सृष्टि का भेद खुल जाएगा आपके आगे। एक परमाणु का भी पूरा भेद साइंटिस्ट के आगे आज तक नहीं खुल सका है। एक चंद्रमा का भी भेद किसी के आगे आज तक नहीं खुल सका है। खोज ही चलती रहती है हर मामले में, लेकिन ऋषि के आगे सारा सृष्टि का भेद खुल जाता है। कुछ भी वो तुरंत ही जान सकता है और कुछ भी वो तुरंत ही वर्णन कर सकता है, ये उसकी सामर्थ्य होती है। इसीलिए महाराज जी जब ये पठानकोट के पास जगह थी, जगह है शाहपुर कंडी, वहां पर जब महाराज जी मौजूद थे तो भगत जी ने एक दिन महाराज जी से सुबह सुबह प्रश्न कर दिया, महाराज जी ये जो महामंत्र है आप कहते हो कि साहब कोई वाणी प्रकट होती है तो पहले महामंत्र लिखो, कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो कहते हैं पहले महामंत्र उच्चारण करो, इस महामंत्र का क्या महत्व है? खैर प्रश्न तो भगत जी ने कर दिया, महाराज जी ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। जब भगत जी महाराज जी के लिए सुबह को नहाने के लिए पानी लेने गए और जो सुबह को वो चाय पीते थे करीब आधा लीटर दूध की, तो चाय बनाने के लिए गए, जब वापस आए तो स्नान कराया, चाय पिलाई, तब महाराज जी ने एक पर्चा उनके आगे रख दिया। वो बनारसी तो कह रहा था कि महामंत्र का क्या महत्व है ये है। तो वो वाणी महामंत्र की महिमा की आपने पढ़ी है, सुनी है संतपराज ग्रंथ में, तो वो वाणी महामंत्र की महिमा का वर्णन कर रही। महामंत्र कब प्रकट हुआ था? 13 वर्ष की आयु में। अब भगत जी कितने वर्षों के बाद उनसे पूछ रहे हैं, और जिस स्रोत से महामंत्र आया था उसी स्रोत से वो वाणी आ रही। वो सत्पुरुष की बुद्धि की रचना नहीं होती है, चाहे वो कलम से लिखे चाहे वो मुंह से बोले, ये कलम और मुंह मात्र ईश्वर के हाथों में इंस्ट्रूमेंट है। अंतर्यामी ईश्वर इस मुंह के द्वारा बोले या इस हाथ के द्वारा लिखे वो क्रिया ईश्वर की ही है, वहां मनुष्य नहीं है। कई बार हम बुद्धि से कहते हैं कि जो समाधि में वाणी निकले वो तो वाणी है, जो हाथ से लिखी जाए वो तो वाणी नहीं हो सकती, वो तो राइटिंग होगी, ह्यूमन राइटिंग होगी। वो ऐसा नहीं, समता विलास देखो शास्त्र है नहीं है, वो हाथ से लिखा गया, महाराज जी के नहीं लिखा गया। और जब उसका प्रीफेस देखो, उसका उसकी विषय सूची देखो, तो वहां क्या लिखा हुआ है? प्रथम अनुभव, द्वितीय अनुभव, तृतीय अनुभव, अनुभव लिखा हुआ है। अनुभव किसे कहते हैं? जब ये जीव ईश्वर के साथ एक हो जाता है उस हालत में, उस हालत को अनुभव कहते हैं, उसके अनुसार हो जाना। अनु माने उसके अनुसार, भव माने होना। तो जब ये जीव ईश्वर के अनुसार ही हो गया, उस हालत में जो वाणी आ रही है वो अनुभव है। तो मंत्र भी क्या है? महामंत्र ये अनुभव है। तो इसीलिए ये देह फिर मन के अधीन काम नहीं कर रही है, ये देह फिर ईश्वर के अधीन काम कर रही है। तो महाराज जी ने वो वाणी जब भगत जी के आगे रखी तो वही वाणी, जैसे सारी वाणी प्रकट हुई थी, बाद में फिर वो कंपाइल करके ग्रंथ के रूप में, यही पास में सिद्ध खड्ड है, यहाँ वो सारा ग्रंथ कंपाइल हुआ था, फिर प्रिंट हुआ था। तो देखिए कि महामन की महिमा की वाणी, वो ईश्वर की आवाज, वो बता रही है कि मंत्र क्या है। त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया पार। जो इस मंत्र का सिमरन करेगा उसका अपार कल्याण होगा। अपार कल्याण कहते हैं मोक्ष को। और सर्व सिद्धि दाता का मतलब कि मन की कामना ही खत्म हो जाएगी, तभी तो सर्व सिद्धि हुई। यदि फिर भी इच्छाएं प्रकट होते रही आपके मन के अंदर तो सर्व सिद्धि का होगी। प्यास तो बची रही आपके अंदर, इच्छा का प्रकट होना सिद्ध करता है कि आपके अंदर प्यास है, कुछ कमी महसूस कर रहा हूं, लेकिन उसके पश्चात वो प्यास आपकी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। फिर मन के अंदर आपके कोई तरंग कमी की नहीं उठ सकती, वासना वहां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए वो वाणी एक और चीज कह रही है। वाणी का अंतिम दोहा जो है, कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए से। कलह कलेश हम जानते कायम होते हैं, मन के अंदर कथित होते हैं। किस रूप में होते हैं? संकल्पों के रूप में होते हैं। एक इच्छा की तरंग उठती है, एक इच्छा का विचार उठता है, जिसको हम संकल्प कहते हैं। वो यदि पूरा ना हो, या जब तक पूरा ना हो, मेरे मन के अंदर बेचैनी बनी रहती है, उसके बारे में प्लानिंग चलती रहती है, उसको पूरी करने के लिए निरंतर सोचता रहता हूं, कर्म करता रहता हूं। तो वही मेरे अंदर कलह कलेश पैदा करते हैं। तो कलह कलेश सब दूर हो, तो फाइनली निर्णय हो गया कि सब दूर हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। तो वो स्थिति क्या होगी? पाए ज्ञान तत् योग। ज्ञान तत्व क्या है? उस ईश्वर को ही ज्ञान तत्व कहते हैं, जिसके आधार पर सृष्टि की रचना हुई है, जिसके आधार पर सारी सृष्टि खड़ी हुई है, इस सृष्टि का जीवन चलना है, जिस प्रकार मेरी देह का जीवन चलना है। तो उसका योग, ये जीव उसके साथ मिल जाएगा। और ये अक्षर क्या है मंत्र के? तत् अक्षर है। तत् कहते हैं ब्रह्म को, ईश्वर को। तो ये अक्षर खुद ईश्वर रूप है, अर्थात इनमें वही शक्ति है जो ईश्वर में है। इसीलिए इनमें शक्ति क्या है? प्रभु दर्शन होए सयो। ये अंदर तुमको प्रभु का दर्शन करा सकते हैं, प्रभु से तुम्हारा मिलाप करा सकते हैं। तो मंत्र कोई साधारण चीज नहीं, मंत्र वो साधन है। जैसे किसी ट्रेन पे बैठते हैं, कलकत्ता पहुंचने का साधन है, मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा कलकत्ता जाने वाले की, तो मुझे कलकत्ता छोड़ देगी। तो मंत्र वो साधन भी है और अपने आप में साध्य भी है, क्योंकि वो ईश्वर रूप है। तो मंत्र की शक्ति अंदर जब प्रकट होती है, तब पता लगता है ये खुद ही साधन है, खुद ही साध्य भी है। तो बताइए, सत्पुरुष के लिए कुछ शब्द ही तो है, वो हमारी लैंग्वेज में ही तो मंत्र प्रकट हुआ है, वो लैंग्वेज है। लेकिन लैंग्वेज होते हुए भी वो लैंग्वेज से ऊपर है। लैंग्वेज में इतनी ताकत कहां होती है? क्योंकि उस मंत्र में वो ताकत है। कि आपको आपके मन को शांत कर सकती है, मन की सारी चिंता फिक्र को भस्म कर सकती है मंत्र की ताकत, और अंतर्यामी उस जीवन रूप ईश्वर से आपका मिलाप करा सकती है। तो इस प्रकार जब मैं ये सब चीजें देखता हूं जीवन में, कि ईश्वर कहानी किस्सा नहीं है कोई, तो शास्त्रों को पढ़ता हूं, सत्पुरुषों के जीवन को ध्यान से देखता हूं, तब मुझको ये विश्वास हो जाता है कि वास्तव में ईश्वर है, और वो देखता भी है, सुनता भी है, जानता भी है, वो ज्ञान प्रकट भी करता है मेरे कल्याण के लिए। दुनिया के बुद्धिमान लोग ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते, वो जिसमें मेरा कल्याण है। ये सत्पुरुष जो अनपढ़ सत्पुरुष हैं, वो ज्ञान प्रकट कर जाते हैं मेरे वास्ते, मेरे कल्याण के लिए, जिसमें मेरी सारी मुसीबतों का समाधान है, सारी मुसीबतों से छुटकारा है, परमानेंट छुटकारा है। माजी कहते प्रेमी, एक बार यदि ईश्वर प्राप्त हो गया तो फिर सारा कलह कलेश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है जीवन। तो वो ईश्वर कितना प्रिय होना चाहिए मेरे लिए। मेरे दो काम कोई कर जाता है तो वो आदमी मेरे लिए कितना प्रिय हो जाता है, कहता हूं बड़े काम का आदमी है, पत्नी के रूप में, पति के रूप में मेरे कुछ, मुझको जब कुछ सुख देता है तो मैं उससे बिछोड़ना ही नहीं चाहता, उसके संग ही रहना चाहता हूं। ईश्वर जो मुझको सब कुछ दे रहा है, जीवन दे रहा है और परमानेंट शांति दे रहा है, वो कितना प्रिय होगा मेरे लिए, मुझे विश्वास नहीं है ना। तो उस गुरु शिक्षा के द्वारा, गुरु संगति के द्वारा, गुरु विश्वास के द्वारा मुझको ये विश्वास होता है कि वो प्रभु मेरे अंदर ही निवास कर रहे हैं, उसी प्रकार निवास कर रहे हैं जिस प्रकार मेरा मन निवास कर रहा है। मेरी सारी समस्याओं का समाधान संसार में नहीं है, संसार तो मेरी समस्याओं को बढ़ा देता है, सारी समस्या का समाधान उस ईश्वर सत्ता में है जो इस देह को जीवन दे रही है, इस देह को जीवित रखे हुए है और सारे संसार को जीवन दे रही है, जिसके बिना यहां कुछ हो ही नहीं सकता। तो जैसे जैसे ईश्वर का महत्व तो मेरी बुद्धि में बढ़ता है, जैसे जैसे ईश्वर के बारे में मैं सत्पुरुषों के जीवन से सीखता हूं, उनके शास्त्रों से सीखता हूं, वैसे ही वैसे ईश्वर के प्रति विश्वास मेरा गहरा होता चला जाता है, और जैसे जैसे ये विश्वास गहरा होता है उसके प्रति मेरे अंदर प्रेम पैदा होता है। तो मैं प्रेम से उस प्रभु की याद करता हूं, एक तड़प के साथ याद करता हूं, और संसार के क्लेश, संसार के दुख, संसार की मुसीबतें मुझको फिर नजर आने लगती है। अभी तो मैं बहका हुआ घूमता हूं, अंदर से एक इंसान बड़ा दुखी है, बड़ा बेचैन है, लेकिन बाहर से वो बड़े अच्छे मकान में रहता हुआ नजर आता है, बड़ी अच्छी कार में घूमता हुआ नजर आता है, बड़े अच्छे वस्त्र पहनते हुआ नजर आता है, बड़ा पैसा है उसके पास, खाने पीने के बड़े साजो सामान है उसके पास। लेकिन जब ये अध्यात्म विद्या का मुझे पता लगता है तो मेरी दृष्टि आंतरिक हो जाती है, फिर किस मानसिक क्लेश से वो गुजर रहा है मुझे वो दिखाई पड़ने लगता है, फिर मुझको समझ आ जाती है ये तो बाहर का दिखावा है, अरे असली सुख तो मन के अंतर्गत है, मन ही संतुष्ट नहीं है तो काहे का सुख। तो ये जो सामाजिक जीवन है, महाजी कहते थे प्रेमी ये खोखला जीवन है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, चित्त के अंदर धैर्य आ ही नहीं सकता, है ही नहीं कोई वस्तु संसार में, तो ये संसार के लोग कैसे सुखी हो सकते हैं। तो अध्यात्म विद्या जब मेरी समझ में आती है तब मेरी बुद्धि का एक निर्णय हो जाता है उनके आधार पर, कि सुख की तलाश करना इस संसार में इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। तो ऐसी बुद्धि में जब विवेक आता है तो फिर ये ईश्वर के लिए ही जीता है, प्रेम से जीता है, पूरा पुरुषार्थ पूरी लगन के साथ उसकी प्राप्ति के लिए करता है, तब जाके पता लगता है कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है। तो गुरु विश्वास से ही, उनके वचनों पर विश्वास से ही मेरे अंदर ईश्वर विश्वास पैदा होता है, जिसे विश्वास जब पैदा होता है तो उनकी प्राप्ति के लिए मेरे अंदर तड़प पैदा होती है, तब गुरु के बताए हुए साधन को जब जीवन में अपनाता हूँ तब मेरे अंदर उस प्रभु के वली, उस प्रभु के पति, अंतर्यामी प्रभु के पति प्रेम पैदा होता है और फिर मेरा जीवन सफल होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वं।